धवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूनं सिद्धे विबुद्धसयले अच्छत्थ बहित्थ बंधनुं मुक्के भक्तिये अहम् नम्यूं पुनो पुनो बंधनम् उच्छम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलिया आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और इस 14वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 143 पर हम आ गए, 143। देखो जो नीचे का पैराग्राफ है ना, वहां से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो वर्गणा है वो सांतर है कि निरंतर है, उसकी चर्चा चल रही थी अपनी। तो यहाँ जो अतीत काल कितना है, तो सिद्धों से असंख्यात गुणा है, ये बात कल हुई थी अपनी, वही बात यहाँ नीचे हम पढ़ रहे हैं। सिद्ध जीव सर्वदा, सर्वदा ने कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट, अतीत काल के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंतर से मोक्ष जाने का नियम है। 6 महीने के मैक्सिमम अंतर 6 महीने का होता है, और फिर 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो उसका एक जीव का रेशियो अगर निकालेंगे, तो हमने पहले बहुत बार उसका कैलकुलेशन किया था, अबाउट 9 घंटे के आसपास उसका उत्तर आता है। नहीं, वो तो जिसको कहेंगे असंख्यात समय है। तथा एक एक जीव, सॉरी एक एक सिद्ध जीव के उत्कृष्ट से कुछ कम एक एक पूर्वकोटि काल मात्र प्रत्येक शरीर स्थान प्राप्त होते हैं, क्योंकि केवली का विहार काल कुछ कम एक पूर्वकोटि मात्र ही उपलब्ध होता है। हमने देखा था 8वें साल के बाद अर्लीएस्ट जिसने संयम धारण करके क्षपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका वो 8 साल माइनस करो कुछ अंतर्मूर्त, तो संयोग में आते ही प्रत्येक शरीर वर्गना शुरू हो गई उनके। तो कुछ कम पूर्वकोटि काल तक उनके ये जो प्रत्येक शरीर स्थान उपलब्ध होते हैं, ये उसका अर्थ है। इसलिए पश्चमान काल में, पश्चमान वर्तमान काल में वर्गणाएं सांतर ही होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। 13वें 14वें का दोनों को मिलकर मैक्सिमम काल, यानी उसमें 8 वर्ष और वो अंतर्मूर्त कुछ कम कर देना। नहीं नहीं नहीं, 13वें में रहेंगे मैक्सिमम काल तक, अंत में 14वां करके सिद्ध हो जाएंगे, यानी उस समय उनके जो 12वें तक बादर निगोद वर्गणा थी, 13वें में प्रवेश होते ही प्रत्येक शरीर वर्गणा चालू हो गई। धन्यवाद। इसलिए वो मैक्सिमम काल कितना हो सकता है, सयोगी अयोगी का मिलकर मैक्सिमम काल किसी जीव को कुछ कम पूर्वकोटि। हाँ हाँ, परंतु वो तो इंक्लूड कर दिया ना, अभी हमको कुछ माइनस तो करना नहीं है उसको। अकेले जब 13वें की बात है तो हमको वो माइनस करना पड़ता है, यहाँ तो 13वां 14वां मिलकर प्रत्येक शरीर वर्गणा बताना है। इसलिए तो वर्तमान में सांतर वर्गणा, उसका अर्थ क्या है ब्रह्म, ये समझ लो कि थोड़े ही जीव उसमें हो गए, और उन जीवों के एक एक समय के डिफरेंस से इतने विकल्प हो गए, असंख्यात कहेंगे हम, परंतु हमने टोटल विकल्प एक एक परमाणु के डिफरेंस से अनंत अनंत देखे थे, जीव राशि से भी अनंत गुणे। हमने देखे थे ना, वो क्षपित से आया है, फिर उसके वो छह पुंज को कल कैसे बढ़ाना, फिर एक एक बाद सॉरी वो तो उल्टे क्रम से नीचे 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 आए थे। तो कहते वो तो बाकी तो वर्तमान काल में वो शून्य रूप से है स्थान, इसलिए सांतर कहा। परंतु सेचिय की अपेक्षा, सेचिय ने पॉसिबिलिटी की अपेक्षा, पहले भी सेचिय शब्द आया था ना दो तीन बार, सब स्थान निरंतर होते हैं क्योंकि यह स्थान ही जीव सहित होता है और ये जीव सहित नहीं होते ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी किसी भी स्थान में कोई जीव पाया जाएगा कभी भी, यानी वो कायम के लिए वो शून्य रूप से नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी की अपेक्षा वो स्थान हो सकते हैं, ये उसका कहने का मतलब है। अब कहते विग्रह गति में विद्यमान अनंत जीव प्रत्येक शरीर वर्गणा के भीतर गर्भित होते हैं, इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अनंत होती है ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते। ये प्रश्न वही था कि जब निगोद जीव, जब तक उन्होंने शरीर धारण नहीं किया है निगोद का, तब तक उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कह दो, ये उनका कहने का मतलब था। कल भी इसकी बात हुई थी अपनी। तो कहते इसलिए उनकी संख्या अनंत में है तो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं भी अनंत हो जाएगी। समाधान, नहीं, क्योंकि निगोद नाम कर्म के उदय से बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद पने को प्राप्त हुए जीवों के प्रत्येक शरीर वर्गणाओं के होने में विरोध है। उनके निगोद नाम कर्म का उदय है इसलिए उन जीवों को प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। कल बात ये भी आई थी कि वो तो एक बंधन बद्ध उसमें भी पाए जाते, विग्रह गति में भी एक बंधन बद्ध, एक एक बंधन में अनंत जीव पाए जाते हैं। बादल निगोद वर्गणा की बात चली तभी। पेज नंबर 144। अभी दो नंबर की शंका, विग्रह गति में विद्यमान जीवों के प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय न होने पर वे प्रत्येक शरीर कैसे हो सकते हैं। यानी ना साधारण नामकर्म का उदय है, क्योंकि वो शरीर नामकर्म का उदय कब होता है, वहां पहुंचने पर जब वो शरीर ग्रहण करता है। परंतु कहते वो निगोद पर्याय वाला तो जीव है ही, वो बादर या सूक्ष्म, और वो शरीर नामकर्म का भले उदय नहीं हो परंतु स्थावर के अंतर्गत जो उसके अनेक भेद है, केवल हम स्थावर नामकर्म नहीं कहेंगे, एक केंद्रीय जाति है स्थावर नामकर्म है, पर उसमें भी जो भेद है, पांच भेद है, उसमें भी जो वैरायटी होगी प्रत्येक या निगोद, उसका नाम कर्म का जो भेदों के भेदों में उसका अंतर्भूत है, इसलिए उनके बादर या सूक्ष्म नाम कर्म का उदय वाले जीव है तो विग्रह गति में उनको प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे, ये उनका कहना है। अब कहते जो प्रत्येक शरीरी जीव है, जो आपने मनुष्य के बारे में बताया था, उसके भी विग्रह गति में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय तो नहीं है, वो भी कहाँ होता है, जब पहुंचना है, जहां शरीर का संयोग होना है वहां पहुंचने पर उसका उदय शुरू होता है, तो उसको भी प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे, ये उनका कहना था कल जो आपका प्रश्न था, है ना। यह कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रत्येक शरीर के उदय की अधीनता का अभाव है, यानी प्रत्येक शरीर वर्गणा उसके उदय से ही कहलाएगी ये बात नहीं है। यदि उदय की अधीनता मानी जाए तो क्षीण कषाय भी प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जावे, क्या कहना, ये दलील समझ में आती है। जैसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है अश्विन भाई, तेरहवें के अंदर, तेरहवें, क्योंकि शरीर के परमाणु का ग्रहण तब तक चलता है, तो वहां पर भी प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय, तो कहते क्षीण कषाय गुणस्थान में है कि नहीं, अरे सभी, पहले से सभी गुणस्थानों में, जन्म के समय से लेकर अभी तेरहवीं के चौदहवीं की बात छोड़ो, मरण तक प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है, वो विग्रह गति में नहीं है। प्रश्न, इन्हें दलील समझ में आई उनकी, कि यदि ऐसा कहो कि प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है इसलिए उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे, तो बारहवें गुणस्थान में भी प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है फिर भी उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे। समझ में आई बात, क्योंकि प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय होने पर भी वहां बादर निगोद पाए जाते हैं तो उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे, इसलिए कहते उसके उदय की अधीनता नहीं है। यह का ना, यदि उदय की अधीनता मानी जाए तो क्षीण कषाय भी प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जावे, क्योंकि उसके उदय और सत्व के प्रति वहां कोई विशेषता नहीं है। उसके ने प्रत्येक शरीर नाम कर्म का वहां सत्व भी है और उदय भी है, इसलिए बादर निगोद और सूक्ष्म निगोदों से असंबद्ध जीव प्रत्येक शरीर वर्गणा होते हैं, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न यही हमारा था कि जो प्रत्येक शरीर वाले जो जीव है, जो विग्रह गति में है, जब तक उसके संबंध नहीं है तो उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा। यदि कहा जाए कि विग्रह गति में भी बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद का स्वतंत्र रूप से एक जीव पाया जाता है, सो यह कहना ठीक नहीं है। यानी विग्रह गति में भी बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद ऐसे सिंगल सिंगल नहीं पाए जाते हैं, यानी सिंगल सिंगल अलग आके फिर वहां आने के बाद वो इकट्ठे हो जावे अनंत, ऐसा नहीं है। वहां पर भी एक बंधन बद्ध अनंत जीव पाए जाते, ये कहना है उनको।
क्यों निगोद में जाएगा तो विग्रह गति में वो बंधन बद्ध हो जाता है।
सिंगल नहीं रहता, वही तो कह रहे। वहां पर भी एक बंधन में बंधे हुए अनंत जीव पाए जाते हैं।
तो ये तो आगे जो सेंटेंस पता है, इसलिए बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद के असंबद्ध जीव प्रत्येक शरीर वर्ग होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। सो जो मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है और विग्रह गति में है वो प्रत्येक शरीर की
ऐसा लगता है यहाँ पर, क्योंकि उससे अभी असंबद्ध है ना, उसके संबंध नहीं हुआ है। शंका, वहां एक जीव के रहने में क्या दोष है ने? एक एक सिंगल बादर निगोद अलग अलग मानो आप, उसका शरीर है और वो जीव एक एक है, ऐसा अगर हम कहेंगे, भले औदारिक शरीर ने पर अन्य तो कुंज है ना, तो कहते नहीं, ऐसा मानने पर बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं को अनंत पने का प्रसंग आता है। यानी अगर सिंगल सिंगल वहां जीव मानेंगे तो सबको बादर निगोद वर्गणा कहनी पड़ेगी और वो अनंत हो जाएगी। परंतु बादर निगोद वर्गणा कहो या सूक्ष्म निगोद वर्गणा कितनी होती है इस विश्व में? असंख्यात लोग। क्योंकि वे असंख्यात लोक प्रमाण ही होती है, ऐसा गुरु का उपदेश है ना? समझ में आई ना बात? हाँ, देखो 145 पृष्ठ पर आते अभी हम। यह कहना कि असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक शरीर वर्गणाएं सब जीवों से अनंत गुणे स्थानों को वर्तमान काल में पूरा करती है, ठीक नहीं है। देखो, हमने पॉसिबिलिटी की अपेक्षा क्या देखा था, प्रत्येक शरीर वर्गणाएं भी जो है वो तो एक एक परमाणु के भेद से अनंत हो जाती है। जैसे हमने 14वें में और 13वें में भी देखा था, एक एक परमाणु बढ़ाते जाओ तो एक एक समय में अनंत विकल्प होते हैं, और एक एक समय नीचे आओ तो भी दूसरे दूसरे विकल्प होते हैं। तो कहते कि एक किसी काल में वो सभी विकल्प वहां नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं तो अनंत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। वे अतीत काल में भी सांतर ही है, यानी अतीत काल में भी वो सारे अनंत स्थान उन्होंने पूरे नहीं किए, ये उनको कहना है। क्योंकि अतीत काल से असंख्यात गुणे अतीत काल में उत्पन्न हुए और प्रत्येक शरीर स्थान रूप जीवों के द्वारा सब स्थानों के पूरा होने में विरोध है। क्या कहने, जो अभी प्रत्येक शरीर स्थान वाले हैं, अभी केवल वो 13वें 14वें वाले ही नहीं, प्रत्येक शरीर वाले, प्रत्येक शरीर वाले तो ये पृथ्वी का एकादी भी जीव होते हैं सारे। तो कहते कि अतीत काल में भी सांतर है, क्योंकि अतीत काल से असंख्यात गुणे, एक एक समय में असंख्यात जीव अगर हम कहते हैं, प्रत्येक शरीर वर्गणा असंख्यात होती है, तो अतीत काल के एक एक समय में असंख्यात हो जाएगी, तो अतीत काल से असंख्यात गुणे और अतीत काल में उत्पन्न हुए ऐसे प्रत्येक शरीर स्थान रूप जीवों के द्वारा सब स्थानों के पूरा होने में विरोध है। क्योंकि स्थान कितने हो गए विकल्प रूप से, पॉसिबिलिटी जीवों से अनंत गुण है, क्योंकि विसर्ग सब से के परमाणु अनंत अनंत हो जाते हैं, और ये प्रत्येक शरीर के इतने भेद हो जाएंगे वर्गणों के, पर वो अतीत काल में भी सभी असंख्यात जीवों के द्वारा भी वो कभी नहीं पूरे होंगे। समझ में आते नहीं ये बात, कि कोई कभी पृथ्वी का एक, वो भी सारे प्रत्येक शरीर वर्गणाएं हैं, तो उन सबको मिलाकर भी प्रत्येक समय में इतने असंख्यात असंख्यात जीव आए, और अतीत काल कितना बीत चुका है, अनंत है वो, कितना अनंत है, जीवों का अनंतवा भाग है, और प्रत्येक शरीर वर्गना हर समय में असंख्यात लेंगे, तो जीवों के अनंतवा भाग का असंख्यात गुणा यानी जीवों का अनंतवा ही भाग होगा। और हमने सेचिय स्थान यानी पॉसिबिलिटीज कितने देखे थे, जीव राशि से अनंत गुणे, यानी अतीत काल में भी वो सभी स्थान कभी पूरे हुए नहीं है, यानी कुछ कुछ स्थान ऐसे तो कभी भी किसी जीव ने नहीं पाए है, ये कहना चाहते हैं। अब दृश्यमान काल में यानी वर्तमान काल में भी वे निरंतर नहीं है, क्योंकि किसी एक समय में पूरे स्थान तो कोई उपाय ही नहीं करेगा, क्योंकि सर्वदा अतीत काल सब जीव राशि से अनंत गुणा हीन पाया जाता है, यानी अतीत काल तो जीवों की राशि के अनंत वे भाग प्रमाण ही हमेशा ही रहेगा, परंतु सेचिय की अपेक्षा, सेचिय ने वो विकल्प यानी पॉसिबिलिटीज हमने देखा था, जो एक एक परमाणु की अपेक्षा से जो हमने देखे थे विकल्प, वो है सेचिय की अपेक्षा सब वर्गणाएं निरंतर है, क्योंकि कोई स्थान कभी जीव नहीं पाएगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए कभी न कभी हो सकता है, यानी शक्यता तो विद्यमान है उसकी, वो बिल्कुल होगा ही नहीं कभी ऐसा नहीं कह सकते कहते, क्योंकि इस अपेक्षा से यही संभव है, ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी अमुक स्थान ही पॉसिबल है अन्य स्थान नहीं ही होंगे ऐसा कभी नहीं कह सकते, अर्थात सेचे की अपेक्षा कोई भी वर्गणा सदा संभव हो सकती है, कभी भी वो संभव हो सकती है, इसलिए सब वर्गणाओं को निरंतर कहा है। किस अपेक्षा, सेचिय की अपेक्षा उसको निरंतर कहेंगे, परंतु किसी जीव ने अभी तक नहीं प्राप्त किया है इसलिए उसको सांतर भी कहेंगे। अब ये प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात हो गई। अब भव्यों के योग्य जो बादर निगोद वर्गणाएं क्षीण कषाय के काल में लभ्यमान है, बादर निगोद वर्गणानी अभी वो निगोद से सहित है, बारहवे गुण स्थान के अंतिम समय में उसका जघन्य स्थान हमने देखा था, और फिर में उसके विसरसोपचय बढ़ाओ, औदारिक बढ़ाओ, विसरसोपचय तेजस बढ़ाओ, विसरसोपचय कारमान बढ़ाओ, और फिर ऐसे करते करते एक जीव बढ़ाओ, इस तरह से हमने उसके सारे अनंत अनंत विकल्प एक एक समय में देखे थे। फिर नीचे के समय में आओ तो उसमें अनंत जीव और इंक्लूड हो जाएंगे निगोद के, इस तरह से हमने हर समय के स्थान देखे थे अलग अलग। तो कहते कि जो बादर निगोद वर्गणा एक क्षीण कषाय के काल में लभ्यमान है वे वर्तमान काल में सांतर है, क्योंकि हर एक समय में कितने जीव हो गए शपक श्रेणी के, जो ने बारहवें गुणस्थान के अंत तक पहुंचे संख्या जीव हो गए, और उनके काल वर्तमान काल में कोई विशिष्ट स्थान पाए जाएंगे, अभी एक समय नीचे एक समय नीचे एक समय नीचे ऐसा भी अगर लेते हैं तो भी वो स्थान को निश्चित ही हो गए। हाँ मार्गणा हो ना, परंतु उसमें जीव है ऐसा भी ग्रहण करेंगे तो भी सभी स्थान तो एट ए टाइम उपलब्ध नहीं हो गए ये कहना चाहते, क्योंकि सब जीवों से अनंत गुणी क्षीण कषाय के योग्य बादर निगोद वर्गणाओं का यानी बादर निगोद वर्गणा के स्थानों का संख्यात जीवों के द्वारा पूरा करने में विरोध है। इसका अर्थ समझ में, क्षीण कषाय में संख्यात ही जीव एट ए टाइम हो गए तो उनके द्वारा कितने जो एक एक समय के डिफरेंस से भी जो स्थान अगर हम देखते हैं वो भी लिमिटेड है, और विकल्प कितने जीवों के अनंत गुणा है, इसलिए सभी स्थान तो उनके द्वारा स्पर्श नहीं किए जाएंगे कहते हैं। अतीत काल में स्पर्शन की अपेक्षा सांतर है, अभी अतीत काल की अपेक्षा भी बात देखो तो जो सिद्ध हो चुके हैं वो जो बारहवें में अंत में आए थे क्षीण कषाय के काल में आए थे तब वो भी अतीत काल जो जीवों का अनंतवा भाग है उसको संख्यात गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्मूर्त गुणित अभी क्षीण कषाय का अंतर्मूर्त है ना, उसके एक एक समय के विकल्प उन्होंने घटित किए यहाँ, क्योंकि अतीत काल लेना है वर्तमान काल लेना है तो संख्यात जीव कहेंगे, पर अतीत काल लेना है तो क्षीण कषाय का अंतर्मूर्त काल लिया उन्होंने। अंतर्मूर्त गुणित सिद्ध राशि प्रमाण स्थानों का ही अतीत काल में स्पर्शन उपलब्ध होता है, और वो भी हमने देखा था अंतिम आवली का असंख्यात भाग, क्योंकि उसके नीचे और चले आते हैं तो वो पुनरुक्त स्थान होते जो मूली में, अर्धक में, वहाँ महाकायिक जो वहाँ पाए जाते उसमें भी उपलब्ध होते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार पश्चमान स्पर्शन भी कहना चाहिए, यानी वर्तमान का, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। सेचे की अपेक्षा यानी पॉसिबिलिटी की अपेक्षा देखेंगे तो निरंतर है, यानी वो कभी किसी जीव के हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बताई है। मूली, थुअर और आर्द्रक आदि में रहने वाली अभव्यों के योग्य जो बादर निगोद वर्गणाएं हैं वे वर्तमान काल में सांतर है। अब कहेंगे वहां की तो हमेशा पाई जाएगी ना, पर उसमें भी इतने सारे विकल्प हमने देखे थे, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद वर्गणाओं के द्वारा सब जीवों से अनंत गुणे सब स्थानों का पूरा करना संभव नहीं। सभी में यही दलील है, क्योंकि सेचे ने पॉसिबिलिटीज तो जीवों से अनंत गुणे हैं, और यहाँ जो बादर निगोद वर्गणाएं एट ए टाइम वर्तमान में तो असंख्यात लोक है, और अतीत काल की अपेक्षा बताएंगे तो भी जीवों के अनंत में भाग प्रमाण है। यही बता रहे, अतीत काल में भी बादर निगोद वर्गणा स्थान सांतर ही है, यानी अतीत काल में भी सभी स्थानों को पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि असंख्यात लोक गुणित अतीत काल प्रमाण, क्योंकि एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। हम जुदे जुदे भी स्थान अगर उसमें कितने ही पुनरुक्त हो गए, परंतु हम नए नए स्थान लोगों ने, जीवों ने ग्रहण किया ऐसा भी अगर हम मान लेते हैं तो भी असंख्यात लोक गुणित अतीत काल प्रमाण स्थान ही अतीत काल में जीवन सहित उपलब्ध होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि सदृश धन वाली भी वर्गणाएं संभव है। समझ में ना, यानी वो तो अनेक स्थान तो रिपीटेड पुनरुक्त हो गए ही हो गए, ये वो और भी कम हो जाएंगे। यद्यपि अतीत काल से गुणित सब जीव राशि प्रमाण बादर निगोद स्थान अतीत काल में उत्पन्न होते हैं, तो भी उत्ती हो गए ना, तो भी सब स्थान व्याप्त कर लिए जाते हैं, भी नहीं है, भी हमने राउंड किया था, फिर से पढ़ती हूँ। यद्यपि भी नहीं चाहिए ना, क्या लिखा है, नहीं ऊपर ऊपर देखते हैं, अदीत कालोवी, अदीत कालादोवी सर्वजीव राशि दोवी, नहीं नहीं ऊपर है ना, जदिवी तीसरी लाइन प्राकृत की पढ़ रहे हैं, जदिवी यानी यद्यपि अदीत कालेन गुणित सर्वजीव राशि मेत्ताणी बादर निगोद ठानानी अदीत काले उपन्ननी होती तो सव ठानानी आउरिज्जंती, यानी यदि यदि भी यद्यपि अतीत काल से गुणित सव जीव राशि मेत्तानी सव जीव राशि प्रमाण बादर निगोद स्थान अतीत काले उत्पन्ननी होती तो अतीत काल में उत्पन्न होते तो होते है नहीं होते तो है नहीं चाहिए होते तो सौ अठाना ने आउर जनती तो सब स्थान व्याप्त कर ले जाते है नहीं। देखो देखो है भी निकालो और भी निकालो और ती के बदले तो करो, फिर मैं वाक्य ठीक से पढ़ती हूँ। यद्यपि अतीत काल से गुणित सब जीव राशि प्रमाण बादर निगोद स्थान अतीत काल में उत्पन्न होते तो सब स्थान व्याप्त कर लिए जाते, ये पॉसिबिलिटी बता रहे। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध हो चुके वो भी पहले नीचे के स्थानों में थे ना, इसलिए पूरे जीव राशि ली और अतीत काल से गुणा किया उसको। यहाँ लिखा ना, अतीत काल से गुणित सब जीव राशि प्रमाण बादर निगो स्थान अतीत काल में उत्पन्न होते तो सब स्थान व्याप्त कर लिए जाते, यानी फिर भी वो जीव राशि से अनंत गुणा हो जाते ना। हमें क्या कहना है, जीव राशि से अनंत गुणे सब उसके विकल्प है। अब कहते कि यदि ऐसा होता तो सभी स्थान व्याप्त हो जाते, क्योंकि अतीत काल से भी और सर्व जीव राशि से भी एक परमाणु विषयक विश्रसोपचय अनंत गुणे होते हैं, यानी एक एक परमाणु के विश्रसोपचय जीव राशि से अनंत गुणे होते हैं।
तो यहाँ पे निषेध किया है, सब स्थान प्राप्त नहीं होते,
नहीं होती है, वही तो कहते हैं। इसीलिए वो करेक्शन किया, यदि भी लिखा ना, वो उन्होंने पॉसिबिलिटी बताया, ऐसा होते तो, यदि भी अतीत काले न ऐसे होते तो सभी स्थान आवृत जनती। सवठाणानम आवृत जनती, सवठाणानी आवृत जनती, क्योंकि वो विश्रसोपचय एक परमाणु के विश्रसोपचय ही उससे अनंत गुणे है। पश्चकमान काल में भी सांतर है, क्योंकि अतीत काल को छोड़कर यहाँ पर सांतर निरंतर प्ररूपणा का भविष्य काल में भी व्यवहार नहीं होता। देखो वर्तमान काल में भी सांतर है, वो तो समझ नहीं, अतीत काल में भी बताए। अब अतीत काल को छोड़कर, यानी उसको अतीत काल को छोड़ दो, तो यहाँ पर सांतर निरंतर प्ररूपणा का भविष्य काल में भी व्यवहार नहीं होता। यदि होता है तो उसका अतीत काल में अंतर्भाव हो जाता है, यानी भविष्य काल की अपेक्षा देखो तो वो तो निरंतर हो जाएगी, तो कहते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भविष्य अनंत काल जाने पर भी वो भविष्य काल अतीत में चला जाएगा, तभी वो सांतर ही हो गए। यानी यहाँ भविष्य काल को भी अतीत में समाहित करके बात कर दिए। यानी लिखा ना, यदि होता है तो उसका अतीत काल में अंतर्भाव हो जाता है, अन्यथा वे स्थान जीव सहित नहीं बन सकते, और एक जीव के द्वारा एक बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती है, जिससे सब बादर निगोदों के द्वारा सब स्थान अतीत और अनागत काल में व्याप्त किए जावे। क्या कहना चाहते हैं? बादर निगोद एक एक जीव की अपेक्षा एक एक वर्गणा नहीं होती है, वो अनंत हो जाती, तो अतीत काल से और जीव राशि से अनंत गुना हो जाती, परंतु ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर जघन्य बादर निगोद वर्गणा के उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से नीचे होने का प्रसंग आता है, क्योंकि जघन्य बादर निगोद वर्गणा जो हमने मानी थी वो बहुत कम हो जाती और प्रत्येक शरीर वर्गणा उससे भी अनंत गुणी हो जाती, परंतु सेचे की अपेक्षा सब स्थान निरंतर है। बारंबार यही बात बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी की अपेक्षा सभी स्थान हम कहेंगे, परंतु वर्तमान में कहो या भूतकाल में कहो, वो तो सांतर स्थान ही हो गए। अब सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं वर्तमान काल में सांतर है, क्योंकि वो एट ए टाइम कितनी हो सकती है, तो असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं में सब जीवों से अनंत करो, अंत हुआ है, अनंत गुणे सेचिय स्थानों के पूरा करने की शक्ति का अभाव है। यानी वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण ही स्थान एक्यूपाय हुए हैं, और सेचिय स्थान पॉसिबिलिटीज जीवों से अनंत गुणे हैं। अतीत काल में भी सेचिय स्थान सांतर ही है, यानी अतीत काल में भी सब स्थानों को जीवों ने स्पर्श नहीं किया है, जिसको स्पर्श नहीं किया कहने की पद्धति है, क्योंकि अतीत काल में उत्पन्न हुए असंख्यात लोक गुणित अतीत काल प्रमाण, यानी एक एक समय में असंख्यात लोक इसलिए अतीत काल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोग इतने सूक्ष्म जीवों स्थानों के द्वारा सब स्थानों के पूरा करने में विरोध है, क्योंकि पूरा तो जीवों से अनंत गुण स्थान है। बादर निगोद वर्गणा के प्रसंग से जो क्रम कहे आए हैं, उसी क्रम से ये भविष्य काल में भी सांतर है। अगर भविष्य काल में नहीं सांतर मानेंगे तो भविष्य काल में वो जीव सहित नहीं है। भविष्य काल में पूरे होते अगर मानेंगे तो जीवों से अनंत गुना जो भविष्य काल है तो जीव सभी नष्ट हो गए, जीव सभी सिद्ध हो चुके, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि भविष्य काल में भी उन्हें जीव सहित माना जाता है तो वह भविष्य काल नहीं है, क्योंकि उसका वर्तमान और अतीत काल में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु सेचे की अपेक्षा निरंतर है। क्या कहना चाहते? कभी भी देखो, आज से अनंत काल जाने पर भी वहां पर भी भूतकाल से भविष्यकाल अनंत गुना हमेशा ही रहेगा, ये कहना चाहते हैं। ये सारे सांतर है कि निरंतर है, बस इतनी चर्चा अपनी चल रही है। पहले उसको ध्रुव ध्रुव की बात देखी थी, अभी ये सांतर निरंतर। महास्कंद द्रव्य वर्गणा सांतर है, क्योंकि वर्तमान में कितनी होती है, एक ही होती है, और उसके विकल्प इतने हो सकते सारे, क्योंकि वर्तमान काल में वह एक है। एक वर्गणा के द्वारा सब जीवों से अनंत गुणे महास्कंद स्थान पूरे जाते हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अतीत काल में भी महास्कंद सेच्य स्थान सांतर ही है, क्योंकि उत्कृष्ट से भूतकाल में उत्पन्न हुए अतीत काल मात्र स्थानों के द्वारा, क्योंकि हर समय में एक एक ही स्थान है, ऐसे हम कहेंगे अलग अलग स्थान उत्कृष्ट रूप से नहीं रिपीटेड तो हो गए, परंतु हम मान लेते कोई नहीं रिपीट हो गए तो भी उत्कृष्ट रूप से उन सभी स्थानों के द्वारा सब जीवों से अनंत गुणे सेच्य स्थानों के पूरे करने की शक्ति का अभाव है। अब के लिए भविष्य में सभी सेच्य स्थान पूरे हो जाएंगे तो कहते भविष्य काल में भी सांतर ही है। परंतु सेच्य की अपेक्षा निरंतर है, ये सभी में उन्होंने घटित कर दिया। ये एक श्रेणी की अपेक्षा बात हुई थी, नाना श्रेणी की अपेक्षा भी इसी प्रकार सांतर निरंतर प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार सांतर निरंतर अनुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब जो 53 पर हमने जो 14 अनुयोग द्वार देखे थे ना, 53 पेज पर, उसमें से अभी ये पांचवा नंबर का लेना है हमको। देखो, अभी तक हमने वर्गणा प्ररूपणा देखी, वर्गणा निरूपणा देखी, वर्गणा ध्रुव ध्रुव अनुगम देखा, वर्गणा सांतर निरंतर अनुगम देखा, अभी वर्गणा योज युग्म अनुगम देखना है। वो पहले एक श्रेणी में बताएंगे, फिर नाना श्रेणी में ऐसा ही बताएंगे। देखो, अब एक श्रेणी वर्गणा की अपेक्षा ओज युग्मानुगम को बतलाते हैं। यथा ओज दो प्रकार का है, कलियोज और तेजोज। युग्म भी दो प्रकार का है, कृतयुग्म और बादर युग्म। बहुत बार बातें आई थी ना ये, और वो कैसे कहना तो हमने देखा था, वो संख्या को चार से भाग देंगे। लिखा है चार का भाग देने पर जिसमें एक शेष रहता है वह कलियोज है। हमने देखा फॉर एग्जांपल 13 संख्या है, चार से भाग देंगे तो तीन का भाग दिया, 12 माइनस किए तो एक शेष रह गया, उसको कलियोज कहेंगे। चार का भाग देने पर जहां तीन शेष रहते हैं वह तेजोज है, यानी 15 को हम चार से भाग देते तो तीन शेष रहते हैं, यानी ये कैसी ऑड फिगर है। दो को तो दो का तो विषम संख्या है जो है, पर विषम संख्या में भी दो प्रकार पाए जाते हैं। चार का भाग देने पर देखो, दो का ही भाग देते ना तो दोनों जगह एक एक रह जाता। 13 को भी दो का भाग देते तो एक शेष रहता, बेशक 12, और 15 को भी भाग देते बेशक 14 एक रह जाता, पर यहाँ हम चार से भाग दे रहे, कहीं एक शेष रहता है कहीं तीन शेष रहते हैं। एक शेष रहने वाली संख्या को कलियोज कहेंगे, और तीन शेष रहते तो तेजोज कहेंगे। अब जो बिना भाग जब पूरा भाग जाता है, जहाँ चार आते हैं वह कृत युग्म है और जहाँ दो आते हैं वह बादर युग्म है। एक्चुअली चार आते हैं निशेष भाग जाता है वह कृत युग्म है और दो शेष रह जाते हैं यानी 14 संख्या है वो बादर युग्म है। 16 हाँ, यानी कुछ शेष नहीं रहता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसी संख्या ली कि 13 को 4 का भाग देते हैं, 4 त्रिक 12, 3 3 से उसको गुणा किया तो 13 में से वो 12 गए तो एक रहा, 15 में से 12 गए तो 3 रहे, 16 में से 12 गए तो 4 रहे, इस तरह से उनको कहना है। और जहाँ दो आते हैं वह बादर युग्म है, इस अर्थपद के अनुसार ये जो नियम बताए उन्होंने किसको क्या कहना, यानी ओज के दो कलियोज और तेजोज और युग्म भी दो प्रकार के, कृत युग्म और बादर युग्म। अब इस अर्थपद के अनुसार परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा कलियोज है, क्योंकि इस वर्गणा का प्रमाण एक है, क्योंकि चार से भाग देंगे तो वहां 0 4 0 0 और एक रह गया, उसको कलियोज कहेंगे। जघन्य संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा बादर युग्म है, जघन्य संख्या दो को कहते हैं, तो चार का दो से भाग दिए तो 4 0 0 और दो रह गए, उसको बादर युग्म कहेंगे, क्योंकि इस वर्गणा का प्रमाण दो है। उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा, अभी बीच वाली समझ लेना, तीन क्या है चार क्या है, इस तरह से उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा तेजोज है। तेजोज किसको कहा था, तीन बाकी रहते हैं, क्योंकि वह एक कम कृतयुग्म प्रमाण है। एक कम कृतयुग्म प्रमाण क्योंकि जो एक कम क्या है, उत्कृष्ट संख्यात के आगे एक अधिक करेंगे तो कौन सी संख्या आती है, जघन्य परिता संख्यात। तो जघन्य परिता संख्यात ये जो संख्या है वो कृतयुग्म राशि है और उत्कृष्ट संख्या तो उससे एक कम है, इसलिए उसको तेजोज कहा। ख्याल में आती है बात, जैसे अगर हम 16 को जघन्य परिता संख्या कहेंगे तो 15 को क्या कहेंगे, तेजोज कहेंगे। उत्कृष्ट संख्या कैसे आती है, हमने देखा था ना, जघन्य परिता संख्या -1 या कृत युग्म -1। अब कहते संख्यात प्रदेशी सब वर्गणा शलाकाएं बादर युग्म है, क्योंकि वे दो कम कृत युग्म प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई, नहीं समझा
अरे
ये वाक्य का अर्थ चाहिए, संख्यात प्रदेशी सब वर्गणा शलाकाएं बादर युग्म है। नहीं समझे, फिर से हम मान लेते हैं 16 संख्या जघन्य परिता संख्यात है और ये संख्यात जो है
ये सभी बादर,
अभी सुनो, ये हमने जघन्य परिता संख्यात मान ली है, उत्कृष्ट संख्यात क्या हो जाएगी 15 और जघन्य संख्यात क्या हो जाएगी 2, यानी ये संख्या टोटल कितनी होगी जिसमें एक भी नहीं है और जिसमें 16 भी नहीं है, तो ये संख्यात संख्यात प्रदेशी वर्गणाएं कितनी है, 2 से लेकर 15 तक,
उसमें एक कम,
एक कहे के कम कर 14 हो जाएगी ना, कम क्यों करना, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, 12, 2, 14 हो गए ना, नहीं समझे। देखो 16 हमें से क्या कम करना है, खाली एक कम करो तो 15 रह जाएगी, पर हमने 2 से लेकर 15 तक लेना है, वो कितनी होगी 14 हो जाएगी। हमारा हमेशा क्या है, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, उत्कृष्ट 15 है, जघन्य 2 है, 15 माइनस 2 13 प्लस 1 14, यानी 2 को भी इंक्लूड करो 15 को भी इंक्लूड करो तो ये संख्या है कितनी होगी 14, यानी उसी का अर्थ क्या है, कृतयुग्म माइनस 2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये कृतयुग्म राशि है और इसमें से एक कम करो तो उत्कृष्ट संख्या आ गई, और यहाँ का एक कम करो तो 2 कम हो गए उसमें।
पर यहाँ पे जो संख्या प्रदेश सब करना है बादल युग में ऐसा बताया है,
वही तो कह रहे हैं। अभी 14 को 2 से 4 से भाग दो,
दो बाकी है
तो उसको क्या कहेंगे, बादल युग में, यही तो कहना चाहते हैं। जरा कठिन हो रहा है, फिर से
13 को हम लोग 4 से भागेंगे तो एक रह जाएगा।
13 को क्यों भाग दे रहे हो,
सब 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 रख रहे हैं ना,
सब संख्यात प्रदेशी,
तो संख्यात प्रदेश 13 वाली
2 से लेकर 15 तक,
तो 13 का 13 वाली ले लिया,
वो 13 वाली संख्या नहीं लेना है, नंबर ऑफ वर्गणा शलाका ही लिए, वर्गणा ही नहीं ली, नंबर ऑफ वर्गणा ही ली है, वर्गणा शलाका अर्थात नंबर ऑफ वर्गणा कितनी हुई, 2 वाली 1, 3 वाली 1, 4 वाली 1, 5 वाली, इस तरह से 15 वाली तक, तो टोटल वर्गणा शलाकाएं कितनी हुई, तो 14 हुई, तो 14 राशि क्या है, दो शेष रहती है ना बादर युग में, बादर युग में।
अच्छा ये शलाका
है, देखो देखो वर्गणा शलाकाएं क्या अर्थ है, नंबर ऑफ वर्गणाएं, समझिए उनकी यानी वो तो भाषा हमको ख्याल में नहीं आ रही। देखो उत्कृष्ट संख्या थी यानी वो 15 वाली संख्या हमने मानी हुई संख्या, तो वो तो तेजोज रहती है। अब जो जघन्य परिता संख्या तो वो कैसी है, कृतयुग्म राशि है, तो संख्यात नाम की जो वर्गणाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, तो 2 से लेकर 15 तक कितनी हुई, 14 हुई, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड करो 15 को भी इंक्लूड करो, तो 14 ये राशि क्या होगी, बादर युग में, क्योंकि वो कृत युग में से 2 कम है इसलिए उसको बादर युग में कहेंगे। परंतु वर्गणाएं चतुस्थान पतित है, आपका प्रश्न वर्गणाएं चतुस्थान पतित है, अभी वर्गणाएं ने संख्यात वर्गणा पहली 2 जय, 2 कैसी है, बादर युग में है, 3 कैसी है, तेजो जय, 4 कैसी है, कृत युग में है, 5 कैसी है, एक बाकी रह गया कलियुग है, 6 ये कैसी है, बादर युग में है, 7 कैसी है, तेजोज है, 8 कैसी है, कृत युग में है, तो चारों ही पॉसिबल है ना समय, ये कहते हैं। एक एक सिंगल वर्गणाएं ले लो तो वर्गणाएं चतुस्थान पतित है, यानी ओज के भी दोनों और युग्म की भी दोनों पॉसिबल है, क्योंकि हमने सारे जो विकल्प देखे थे एक एक परमाणु से बढ़ते हुए विकल्प देखे थे, यानी 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, 6 प्रदेशी, 7 प्रदेशी, हर एक परमाणु को हमने एक एक प्रदेश बढ़ाया था, इसलिए उसमें चतुस्थान पतित कहा। यहां तक समझे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दोबारा लक्ष्मी ख्याल में आती है बात, थोड़ा थोड़ा देखो देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, चतुस्थान पतित है ना, उसमें कलियोज भी है, बादर युग में भी है, तेजोज भी है, कृत युग में भी है, क्योंकि हाँ दो, क्योंकि दो दो संख्यात प्रदेशी कौन कौन सी है, 2 परमाणु वाले जो है उसको 2 प्रदेशी कहेंगे, वो संख्यात प्रदेशी है, परंतु वो कैसी राशि है, 2 बाकी है ना, तेजोज है, 3 संख्या वाली जो है वो क्या है,
एक बाकी नहीं,
नहीं, 2 संख्या वाली बादर युग्म थी,
2 संख्या वाली बादर,
3 संख्या वाली तेजोज हो जाएगी, 4 संख्या वाली कृतयुग्म हो जाएगी, 5 संख्या वाली कलियोज हो जाएगी, इस तरह से एवरी पॉसिबिलिटी है, चारों में से प्रत्येक पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वर्गणाएं चतुस्थान पतित है। देखो वर्गणा शलाका है, नंबर ऑफ वर्गणाएं, वर्गणाएं कहेंगे एक एक वर्गणा अगर हम कंसीडर करते हैं तो सारे ही पॉसिबिलिटीज है, चतुस्थान पतित है। आगे बढ़े, जघन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा, कृत युग में है, क्योंकि अभी हमने देखा था जघन्य असंख्यात क्या होता है, तो जघन्य परिता संख्यात, तो जघन्य परिता संख्यात ये राशि कृत युग में है, ये हमको मालूम है, वो गणित के उसमें बताए हुए है। क्योंकि वह जघन्य परिता संख्यात प्रमाण है। उत्कृष्ट असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा तेजोज है, उस उत्कृष्ट असंख्यात कौन से थे, असंख्याता संख्यात, जो क्या है, जघन्य परितानंत से एक कम है। जैसे हमने देखा था कि जघन्य परिता संख्यात संख्या कृतयुग में है, वैसे जघन्य परितानंत भी कृतयुग में राशि है, उसमें एक कम करेंगे, जैसे 16 में से एक कम हमने किया था तो वो तेजोज हो जाएगी। ख्याल में आती है बात ये, क्योंकि वह एक कम कृतयुग में है। एक कम कृतयुग ने क्यों कहा, क्योंकि जघन्य परितानंत संख्या कृतयुग में राशि है। असंख्यात प्रदेशी वर्गणा शलाकाएं कृतयुग में, देखो अभी टोटल नंबर ऑफ असंख्यात प्रदेशी वर्गणा है, अभी ये कैसे लेखन निकालना, वर्गणा शलाका बताइए ना, तो उसमें देखो देखो अभी जो जघन्य परितानंत देखते हैं, अभी हम 16 के बदले हम 256 ले लेते हैं, और यहाँ हमारी असंख्यात कितनी थी, 16 थी, जघन्य परिता संख्यात 16 थी, और उत्कृष्ट परिता संख्यात असंख्याता संख्या 255 हो जाएगी मानने के लिए। अभी इसके विकल्प कितने हो जाएंगे, दिस माइनस दिस प्लस वन, उसके बदले दिस माइनस दिस करो, वही हो जाएगी ना, 255 में से 16 माइनस करके एक मिला दो, उसके बदले 256 में से 16 माइनस करो ना, बात वही होगी। तो ये भी कृतयुग में राशि है, उसमें से कृतयुग में राशि माइनस हो जाएगी, तो बीच में कृतयुग में ही रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कहना चाहते आप, ऐसा करके देखो 256 में से 16 गए, 240 रहेंगे, तो 4 से भाग जाता है उसको, ये कृतयुग में राशि है, ये कहना चाहते हैं। हमने संख्या की जो वर्गणा शलाकाएं बादर युग में होती है ऐसा देखा था, क्योंकि कृतयुग में से केवल एक माइनस किया था, इसमें से ये संख्या माइनस की यहाँ पर, तो जो ये असंख्यात वर्गणाएं, जो असंख्यात प्रदेशी वर्गणाएं हैं, नंबर ऑफ कितनी है, एक एक से बढ़ती हुई, जघन्य परिता संख्या से लेकर उत्कृष्ट असंख्याता संख्या, तो कहते वो राशि कैसी है, तो कहते कृतयुग में राशि, वो कितनी है क्या है उसकी बात नहीं है, वो कृतयुग में राशि है, बस इतना हमको लेना है। तो यहाँ लिखा है ना असंख्यात प्रदेशी, प्रदेशो हुआ है, प्रदेशी वर्गणा शलाकाएं यानी नंबर ऑफ वर्गणाएं कृतयुग में है, क्योंकि वे जघन्य परिता संख्यात कम जघन्य परितानंत प्रमाण है। समझ में आई बात, यानी जघन्य परितानंत माइनस जघन्य परिता संख्यात हो जाएगी, तो जघन्य परितानंत भी कृतयुग में राशि है, और उसमें ये भी कृतयुग में राशि माइनस की, कृतयुग में से कृतयुग में चला गया, तो वो भी कृतयुग में ही रहेगा। अभी हमने करके देखा था ना, 256 को कृतयुग में थी, 16 भी कृतयुग में है, और माइनस किया तो 240 भी कृतयुग में रहा। हाँ, परंतु वर्गणाएं चतुस्थान पति थे, क्योंकि असंख्यात की जो हमने मान ली ना 16 से शुरू की, तो 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, सभी होती है, एक एक से वो सारे चतुस्थान पति थी होगी, सभी स्थान उसमें हो गए। इसी प्रकार अभी हमारा विषय क्या है, बस वो ओज है कि युग्म है और कौन सी वाली है, बस इतना ही हमको देखना है। इसी प्रकार सब वर्गणाओं के विषय में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जघन्य महास्कंध द्रव्य वर्गणा कृतयुग्म है। अनंतों की बात है परंतु वो कृतयुग्म राशि उन्होंने बता दिया। तथा उत्कृष्ट महास्कंध द्रव्य वर्गणा भी कृतयुग्म है। तो महास्कंध वर्गणा शलाकाएं कलियोज रूप है, क्योंकि उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन करते हैं। समझ में आई बात? तो प्लस वन किया तो उसको कलियोज हो गया, क्योंकि कृतयुग्म में से कृतयुग्म माइनस करते हैं, परंतु उसमें प्लस वन करना है हमको, सभी विकल्प लेना है तो एक शेष रह जाएगा, इसलिए इसको कलियोज कहते हैं। परंतु वर्गणाएं चतुस्थान पतित है, जब नंबर ऑफ वर्गणाएं कहेंगे वो भी हमने विकल्प रूप स्थान देखे तो एक एक से बढ़ते हुए सभी स्थान है, तो उसमें चारों स्थान पाए जाएंगे। अब ये एक श्रेणी की बात हुई। नाना श्रेणी ओज युग्मानुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा क्या ओज रूप है या क्या युग्म रूप है? जघन्य कृतयुग्म रूप है तथा उत्कृष्ट भी कृतयुग्म रूप है। नाना श्रेणी यानी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने होती है उसकी बात है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आचार्य परंपरा से आए हुए, आए शब्द रह गया वहां पर, आए हुए सूत्राविरुद्ध यानी सूत्र से अविरुद्ध गुरु के उपदेश से जाना जाता है।
या तो ये परमाणु कुदगल द्रव्य वर्गणा बताई ना, वो क्या लेना है हम लोग को?
परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा यानी सिंगल प्रदेशी है, तो सिंगल प्रदेशी कितनी पाई जाएगी इस विश्व में? अनंत होगी ना, तो अनंत क्या फिक्स वाला अनंत होगा? तो क्या उसमें वेरिएशन होगा ना, कभी परमाणु रूप रहने वाले कम होंगे, कभी परमाणु रूप रहने वाले अधिक होंगे। तो वो जघन्य में रहेंगे अनंत, वो भी कृतयुग्म है, और उत्कृष्ट पाए जाएंगे वो भी कृतयुग्म रूप राशि है, और इन बिटवीन वाले जो है
वो तो चारों स्थान वाले
हैं। तो जघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणा के चार भेद है, क्योंकि एक एक से बढ़ते हुए सभी पाए जाएंगे ना उसमें, यानी कितने एट ए टाइम परमाणु रूप से कितने हैं उसको नाना श्रेणी कहेंगे। इस प्रकार ध्रुव स्कंध द्रव्य वर्गणा वह रह गया, ध्रुव स्कंध द्रव्य वर्गणा तक जानना चाहिए, यानी द्विप्रदेशी कितनी है तो अनंत है, मिनिमम कितनी है मैक्सिमम कितनी है। तो ध्रुव स्कंध तक जो मिनिमम मैक्सिमम का प्रमाण जो है कृतयुग्म है, और बीच वाले चारों भेद पाए जाएंगे, क्योंकि वो सभी निरंतर स्थान है ना, हमने क्या देखा था, वो सभी निरंतर वाले स्थान है। बीच में निरंतर वाले एक श्रेणी में निरंतर है, और ऐसे भी उसके एट ए टाइम कितने संख्या हो सकती है उसमें भी स्थान पाए जाएंगे उतने। उपरिम शेष वर्गणाओं में जघन्य वर्गणा कलियोज रूप है, क्योंकि वह एक है। उत्कृष्ट वर्गणा तेजोज रूप है, और मध्य की वर्गणाएं चारों प्रकार की है, शांतर से लेकर ऊपर की।
हाँ,
कितनी है मिनिमम पाई जाती है ऐसी बात। इतनी विशेषता है कि महास्कंध द्रव्य वर्गणा की नाना श्रेणी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक ही पाई जाती है, क्योंकि सर्वदा सदृश धन वाली बहुत वर्गणाओं का अभाव है। नाना श्रेणी का अर्थ है एट ए टाइम नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी होगी, बस इतनी। इस प्रकार ओज युग्मानुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अभी वो 53 नंबर का 6 नंबर की बात है। हाँ, अभी वर्गणा हमने शांतर निरंतर देखा है, ओज युग्म देखा, अवर्गणा क्षेत्रानुगम 149 पृष्ठ पर पढ़ते हैं। क्षेत्र में लोक का कितना भाग व्याप्ता है ऐसा हम देखेंगे। एक श्रेणी वर्गणा क्षेत्रानुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणाओं और संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाओं का कितना क्षेत्र है वो तो समझ में आवे ना। वो एक प्रदेश व्याप्ता है और संख्यात प्रदेशी एक प्रदेश भी व्याप्ता है, दो प्रदेश भी व्यापेगा अलग अलग। तो कहते लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा से लेकर सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा सूक्ष्म निगोद वर्गणा तक इन वर्गणाओं की एक श्रेणी का कितना क्षेत्र है, सब लोक क्षेत्र है। यानी वो कहाँ कितनी पाई जाती है ऐसा लेना है। असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा से लेकर
एक ही श्रेणी का वो अंतर क्षेत्र बता रहे हैं तो झगड़े परिता संख्या प्रमाण जो वर्गणा है वो भी पूरा लोक
देखो वही वही प्रश्न है। देखो यानी सूक्ष्म निगोद वर्गणा तक कितना क्षेत्र है तो सब लोक क्षेत्र है। इस पर शंकाकार की शंका है। जल में, थल में और आकाश में सूक्ष्म निगोद वर्गणा आदि सब वर्गणाएं संभव है, इसलिए उनका सब लोक प्रमाण क्षेत्र हो वो। परंतु प्रत्येक शरीर कौमा देना यहाँ और बादर निगोद वर्गणाओं का सब लोक प्रमाण क्षेत्र नहीं हो सकता। समझ में आई ना ये, क्योंकि प्रत्येक शरीर वाले कहाँ रहते हैं इसके अपेक्षा से उनकी बात बता रहे हैं। क्योंकि वे आठों पृथ्वियों और भवन विमानों का आश्रय लेकर ही अवस्थित है, ये प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि एक तो प्रत्येक शरीर वाले सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, देखो हमने देखा ना सूक्ष्म जो वैरायटी है वो पूरे लोक में है, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक और सूक्ष्म वायु कायिक जीवों का सब लोक में अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं आता। हमने देखे थे पांचों ही सूक्ष्म जीव पूरे लोक में रहते हैं, वो सारे पांचों सूक्ष्म निगोद को छोड़ो, परंतु बाकी तो सब चार कायिक वाले वो तो प्रत्येक शरीर वाले हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक शरीर वाले जीवों का मारणांतिक पद और उपपाद की अपेक्षा सब लोक प्रमाण क्षेत्र पाया जाता है। यानी क्षेत्र कहाँ है तो मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक, भले उसके जीव असंख्यात लोक प्रमाण हो गए प्रत्येक शरीर वर्गणा वाले, परंतु मारणांतिक करने से वो सारा ऑक्युपाय होता है उनका, इसलिए
ये तो सब समझ में आया। पर यहाँ पे असंख्यात प्रदेशी तो वहाँ पे झगन या
क्या क्या क्या, क्या?
ये जो ऊपर बताया ना असंख्यात प्रदेशी जो
असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा से लेकर
झगन या असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा है वो झगन या परिता संख्यात प्रमाण है तो उसका क्षेत्र भी पूरा लोक प्रमाण हो जाएगा।
एक वर्गणा का क्षेत्र नहीं बता रहे।
अच्छा टोटल
नहीं समझा आप। देखो हमारी भाषा जो है कृष्ण लेशा का क्षेत्र कितना है, क्यों
तो
अरे एक जीव तो इतनी एरिया व्याप्ता है।
नहीं नाना जी,
अब यह नाना वर्गणा लेना ना, असंख्यात प्रदेशी कितनी वर्गणा है इस विश्व में,
असंख्यात प्रदेशी वर्गणा है
अनंत अनंत है। हमने देखा ना एक प्रदेशी अनंत है, दो प्रदेशी अनंत है, संख्यात प्रदेशी अनंत है, अनंत संख्यात प्रदेशी अनंत है। तो असंख्यात प्रदेशी अनंत वर्गणाओं में ने पूरा लोक व्याप्ता है कि नहीं व्याप्ता, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में आई ना बात। अभी यहाँ बात हो रही है सचित्र वर्गणाओं की, प्रत्येक शरीर वर्गणा भी पूरा लोक में कैसे होता है, तो कहीं से मरकर उपपाद में, उपपाद के काल में भी उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा ही कहेंगे। मारणांतिक में तो है ही प्रत्येक शरीर वर्गणा है। अब महास्कंद द्रव्य वर्गणा का कितना क्षेत्र है, कुछ कम सबलोक क्षेत्र है।
महास्कंद में कुछ कम क्यों है?
महास्कंद द्रव्य वर्गणा का
वो तो पूरा लोक पे व्याप्त है ना,
वही तो माखंड दव वगणा केवड़ी खेते लोगे देसु ने, हम तो पूरे लोक प्रमाण स्कंद होता ऐसा देखा था ना शायद वो
वात वाले में नहीं
है। नहीं नहीं सूक्ष्म पृथ्वी का एक का ही स्कंद होता है तो वात वाले को छोड़ा होगा, परंतु वहाँ सूक्ष्म तो पाए जाएंगे ना,
सूक्ष्म तो पूरे लोक के व्याप्त
है। अब देखेंगे कहीं आएगा तो कुछ कम सब लोग क्यों लिया। अब नाना श्रेणी क्षेत्रानुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा का कितना क्षेत्र है कि सब लोक प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि उसका प्रमाण अनंत है। अभी नाना श्रेणी ने उसका अर्थ क्या है, सिंगल सिंगल परमाणु वाले कितने हैं तो अनंत है जो पूरे लोक में व्याप्त है। इसी प्रकार शांत निरंतर वर्गणा तक ले जाना चाहिए, यानी वो भी उनकी संख्या अनंत होने से पूरे लोक में है। अब प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का कितना क्षेत्र है, सब लोक प्रमाण क्षेत्र है क्योंकि वे असंख्यात लोक प्रमाण है। समझ में आई ना, उसके एरिया कैलकुलेट करके उन्होंने बता दिया। और ऐसे भी ऊपर उन्होंने बता दिया था पूरा लोक कैसे हो सकता है, मारणांतिक उपाद और ये तो हमने देखा था सूक्ष्म जीव सब जगह है वगैरह वगैरह। महास्कंद द्रव्य वर्गणा का कितना क्षेत्र है, कुछ कम लोक प्रमाण है।
लास्ट टाइम हमने पैसे भी रखा था तो ये कुछ हम लोग को मिला होगा जवाब।
प्रश्न 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 ही रहा था क्या ना?
नहीं नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया था तो वो हम लोग को घटित हो गया होगा कुछ कम।
अच्छा बताएंगे आगे कहीं क्षेत्रानुगम में कुछ लोग, क्योंकि वो एक ही होता है ना। कहाँ पर? 150 में स्पर्शन में, वो स्पर्शन है वो आगे है, वो स्पर्शन है। कुछ कम लोक प्रमाण और सब लोग का स्पर्शन किया, सब लोग यानी अतीत काल में होगा, यानी कुछ शिफ्ट होती होगी
कुछ छूटता क्योंकि बेसिक समझ रहा आज कल पूरे लोक में व्याप्त।
हाँ उसी को कहते हैं, परंतु थोड़ा सा कम होता होगा कुछ कहीं से, इसलिए वो कभी ना कभी वो जगह व्याप्त होती होगी, इसलिए अतीत काल की अपेक्षा उन्होंने पूरा लोक लिया। कुछ कम लोक का और सब लोक का लिया ना, क्षेत्र में अतीत काल लेते हैं, सॉरी स्पर्शन में अतीत काल लेते हैं, ये वर्तमान का है, यानी वो जो जगन्य से उत्कृष्ट का जो प्रमाण है उसमें कुछ वेरिएशन होता होगा शायद। जगन्य महास्कंद और उत्कृष्ट महास्कंद की बात है ना, उसमें कुछ बदल होता होगा, पता नहीं। अब ये नया अनुगम चालू हो गया, स्पर्शन अनुगम, वही 53 पेज पर जो 7 नंबर का है। अभी हमने क्षेत्रानुगम देखा ना, वहां वर्गणा का स्पर्शन अनुगम, उसमें एक श्रेणी की बात बताएंगे, बाद में नाना श्रेणी की बात बताएंगे। एक श्रेणी वर्गणा स्पर्शनानुगम की अपेक्षा, अब जहाँ क्षेत्र ही पूरा लोक है वहां स्पर्शन भी पूरा लोक होगा ही होगा। परमाणु, ये परमाणु है, परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणाओं और संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणाओं ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ये वर्तमान का, और सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। समझ में आती है ना बात? असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा से लेकर सूक्ष्म निगो द्रव्य वर्गणा तक इन वर्गणाओं की श्रेणी ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अतीत और वर्तमान काल में सब लोक का स्पर्शन किया है। यानी जहां वर्तमान में ही पूरा लोक था तो अतीत में भी हो जाएगा। महास्कंद द्रव्य वर्गणा ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, वर्तमान में कुछ कम लोक प्रमाण क्षेत्र का है ना, और अतीत काल में सब लोक का स्पर्शन किया है। यानी वो महास्कंद कहीं कम पड़ता होगा, परंतु वो लोक की कौन सी जगह व्याप्ता है इस तरह से। इसी प्रकार नाना श्रेणी का स्पर्शन कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर सूक्ष्म निगोद वर्गणा तक इन वर्गणाओं ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्योंकि नाना श्रेणी में अनेक है ना, वो उसमें पूरा लोक हो जाता है। क्योंकि नाना श्रेणी में जो हमने पहले देखा था ना, क्षेत्र भी पूरा लोक था, तो स्पर्शन भी पूरा लोक है ही है। महास्कंद द्रव्य वर्गणा ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, कुछ कम लोक प्रमाण क्षेत्र का वर्तमान में, और सब लोक का स्पर्शन किया है। अब ये नया अनुयोग द्वार 8 नंबर का, अभी उसकी काल की बात है। एक श्रेणी कालानुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा का कितना काल है?
सब काल
वर्गणा देश की अपेक्षा सब काल है। अर्थ है ने परमाणु द्रव्य वर्गणा हमेशा ही पाई जाएगी, परंतु पर्टिकुलर परमाणु उसी रूप से रहने का ये नहीं काल। वो तो एक सिंगल प्रदेशी है तो दो प्रदेशी में जुड़ जाएगा या अनंत प्रदेशी हो जाएगा, उसके बात नहीं है। इसलिए सामान्य अगर कहेंगे उसको वर्गणा देश कहा। द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गणा तक प्रत्येक वर्गणा का सर्वत्र इसी प्रकार काल कहना चाहिए। सर्वत्र इसी प्रकार ने हमने देखा था कि वर्गणा देश ने सामान्य से कथन करेंगे तो हमेशा ही पाई जाएगी। अचित्त अध्रुव चाहिए, ध्रुव नहीं, अचित्त अध्रुव, क्योंकि ध्रुव स्कंद ऊपर बता दिया उन्होंने। इसी का दूसरा नाम है सांतर निरंतर वर्गणा। देखो ऊपर लिखा है प्राकृत में नीचे के पैराग्राफ की तीसरी लाइन, अचित्त अध्रुव खंद द्रव्य वर्गणा। तो अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा का कितना काल है, जिसको हम सांतर निरंतर वर्गणा कह रहे हैं। जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी एक समय तक वो सांतर निरंतर जो है, जहां शून्य अशून्य की बात देखी थी ना हमने उस तरह से, इसी प्रकार महास्कंद द्रव्य वर्गणा तक जानना चाहिए।
तो महास्कंद द्रव्य वर्गणा भी जगन्य एक समय के लिए अनंत काल तक है।
प्रत्येक शरीर बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीरों के पुद्गलों द्वारा तथा उनके विसरस उपचयन द्वारा भेद संघात को प्राप्त होने वाले जीवों के द्वारा प्रत्येक समय में उपचय और अपचय भाव को प्राप्त होने वाली और सदृश धन वाली आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्गणाओं का असंख्यात लोक पुद्गल परिवर्तन काल तक अवस्थान नहीं बन सकता।
समझ नहीं आया।
देखो देखो अने वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कितना कहा, असंख्यात लोक प्रमाण पुद्गल परिवर्तन काल। फिर से
तो औदारिक तेजस और कार्बन शरीर के पुतकलों द्वारा,
यानी वो इतने काल तक वो तो अवस्था नहीं रह सकता। फिर से प्रत्येक शरीर यानी जो सचित्त वर्गना है उनके, अब इसका विशेषण यह है कोमल देना, औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मन शरीरों के पुद्गलों के द्वारा तथा उनके विश्लेषोपचयन के द्वारा भेद संघात को प्राप्त होने वाले, यहाँ कोमा लगा, फिर जीवों के द्वारा प्रत्येक समय में उपचय और अपचय, यानी उपचय करना यानी संचय यानी लेना और अपचय यानी छोड़ना, इसको प्राप्त होने वाली और सदृश धन वाली आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्गणाओं का असंख्यात लोक पुद्गल परिवर्तन काल तक अवस्थान नहीं बन सकता, यानी वो चलती रहे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अचित्त ध्रुव वर्गणा बताई थी ना, उत्कृष्ट काल अनंत है जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, तो यहाँ इनका तो नहीं बन सकता। असंख्यात लोक प्रमाण सदृश धन वाली वर्गणाएं है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथन का यो मध्य प्ररूपणा के साथ विरोध आता है, क्योंकि कौन सी वर्गणाएं कितनी है तो उसमें यो मध्य रचना होती है, यानी जगन्य ध्रुव स्कंद वर्गणा कितनी है, फिर वो बढ़ती चली जाती है फिर कम हो जाती है, इस तरह से।
ये सभी सचित्त वर्गणा की बात है, बराबर
तीन सचित्त वर्गणाओं की बात है।
उसके साथ जो औदारिक तेजस और कामन शरीर के पुद्गलों के द्वारा और विश्वेश के द्वारा संगत को प्राप्त होने वाले जीवों के द्वारा प्रथम प्रत्येक समय में उपचय और अपचय को प्राप्त होने वाली और सदृशन वाली आवली के असंख्यात प्रमाण वाली वर्गणाओं का सो असंख्यात रूप,
यानी इतनी जो अवली के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणाएं हैं उनका अवस्थान लंबे काल तक नहीं हो सकता, ये क्यों है? अब कहते कि असंख्यात लोक प्रमाण सदृश धन वाली वर्गणा ऐसा कहो, तो कहते वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यव मध्य प्ररूपणा में वो बीच वाली कुछ जो वर्गणा अधिक काल तक रहने वाली कुछ वर्गणाएं होगी, सभी तो नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। इसलिए अभी उसका रिजल्ट क्या बता रहे, इसलिए इन एक श्रेणी वर्गणाओं का, वो वर्गणा बराबर लिखना, क्योंकि हमने एक एक परमाणु से बढ़ती हुई देखी थी ना सारी वर्गणाएं, इन एक श्रेणी वर्गणाओं का काल जानकर कहना चाहिए। क्या कहते हैं, सबके लिए एक समान काल नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें से कुछ वर्गणाएं वो थोड़े काल तक रहेगी, कुछ बीच वाली लंबे काल तक वैसे की वैसी रहेगी, इस तरह से कहना चाहते, इसलिए जानकर कहना चाहिए। इतना काल है यह बात हम कहने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि इस विषय का कोई उपदेश नहीं पाया जाता। जब तक मूल सूत्र में नहीं आता है तो अपनी बुद्धि से कोई अपना आचार्य भी उसका उपदेश नहीं देंगे। उपदेश के प्राप्त होने पर भी ध्रुव प्राप्ति है अथवा यह स्थान निबंधन वर्गणाओं का उत्कृष्ट काल नहीं है, किंतु जीव निबंधन वर्गणाओं का उत्कृष्ट काल है। हमने देखा था वो जो वर्गणाओं के जो स्थान है वो अलग थे एक एक परमाणु से बढ़ते हुए, और हमने जीवों की अपेक्षा से स्थान अलग देखे थे, क्योंकि हमने देखा ना प्रत्येक शरीर वर्गणा में भी पृथ्वी का एक जल का एक आगिनी में असंख्यात जीवों का वो समूह था, और निगोद वर्गणाओं में तो हमने देखी थे एक एक निगोद जीव अधिक है, दो अधिक है, अनंत अधिक है वगैरह वगैरह। इनका सेचीय रूप से यानी पॉसिबिलिटी से हमने देखा था अनंत काल कहने पर विरोध आता है, यह कहना ठीक नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी रूप से अनंत काल भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई कारण उपलब्ध नहीं होता, अथवा आगम तर्क का विषय नहीं है, यानी हम अपने तर्क वहां नहीं चलते हैं, इसलिए पहले का ही काल ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार नाना श्रेणी कालानुगम की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर महास्कंद द्रव्य वर्गणा तक वर्गणादेश की अपेक्षा सर्वदा काल है, यानी सामान्य से वो हमेशा रहेगी, जिसको हम कहें ध्रुव शून्य वर्गणा भी हमेशा ध्रुव शून्य ही कहलाएगी, इसलिए कहते वर्गणादेश की अपेक्षा वो हमेशा ही पाई जाएगी। इस प्रकार कालानुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब उसमें अंतरानुगम बता रहे हैं, अंतर यानी वो वर्गणा नहीं रहेगी और फिर बाद में हो जाएगी। अब एक श्रेणी वर्गणा अंतरानुगम की अपेक्षा, जो जो हमने निरंतर देखे थे, जो काल जन का सर्वदा काल था, उसमें कोई अंतर ही नहीं होगा। तो परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा का अंतरकाल कितना है, तो कहते अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। हमने देखा था ना ध्रुव स्कंद वर्गणा तक तो सदा काल देखा था, इसी प्रकार द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा तक प्रत्येक वर्गणा का अंतर नहीं है, ऐसा प्रत्येक वर्गणा की अपेक्षा कथन करना चाहिए। उसमें से एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सभी बातें हमेशा ही पाए जाएंगे। अचित्त ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा का, द्रव्य हुआ द्रव्य वर्गणा का अंतरकाल कितना है, जिसको हम सांतर निरंतर कह रहे थे, तो जघन्य अंतर एक समय है। हमने जो अंतर रूप वर्गणा हमने देखे ना, एक एक परमाणु से बढ़ती हुई एक एक वर्गणा की बात है। यहाँ पर कुछ जो बीच में शून्य रूप से है वो एक समय के बाद अशून्य हो जाएगी या फिर शून्य हो जाएगी, तो शून्य है वो एक समय के अंतर से फिर दोबारा शून्य हुई, या जो विद्यमान है वो शून्य होकर फिर विद्यमान हो जाएगी, तो अंतर एक समय का होगा। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी सांतर निरंतर रूप से वो वर्गणा हमेशा पाई जाएगी, पर उसमें एक एक वर्गणा की बात करते हैं शून्य और अशून्य रूप से, या सांतर और निरंतर, उसमें उसका अंतर पड़ सकता है। प्रत्येक शरीर कॉमा लगा लो, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का अंतरकाल कितना है, जघन्य अंतर एक समय है, यानी पर्टिकुलर प्रमाण वाली वो वर्गणा अन्य प्रमाण होकर फिर दोबारा उस प्रमाण में आ जावे। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, हमने जो काल देखा वैसा ही वो अंतर घटित करना है। यह सेचीय की अपेक्षा कथन किया है, वास्तव में तो किन्हीं सचित्त अध्रुव स्कंद वर्गणा स्थानों को अंतर से रहित होना चाहिए, अन्यथा अतीत काल में सब स्थानों में जीवों की संभावना प्राप्त होती है। यानी कोई ऐसे कि उसमें अंतर ही नहीं है, अंतर ही नहीं है ऐसा कहना उसका अर्थ क्या है, वापस उसमें लौटेंगे नहीं। अंतर कब होगा, वो छोड़कर फिर दोबारा वापस लौटे, तो कितने ऐसे स्थान है वो प्राप्त हुए फिर दोबारा किसी ने प्राप्त ही नहीं किए, तो उसको अंतर से रहित भी कहेंगे। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न हुए असंख्यात लोक गुणित अतीत काल प्रमाण, यानी अतीत काल को असंख्यात लोक से गुणा करना, इतने स्थान सब स्थानों को पूरा करते हैं, ऐसा होने में विरोध है। सब स्थान कितने, जीवन से अनंत गुणे, और अभी तो इतने ही हो चुके हैं। इसी प्रकार महास्कंद द्रव्य वर्गणा के विषय में भी कहना चाहिए, यानी वो पर्टिकुलर प्रमाण में पाया ही जा गया है ऐसा नहीं कह सकते, उसका अंतर नहीं भी हो सकता। नाना श्रेणी वर्गणा अंतरानुगम की अपेक्षा इसी प्रकार कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाओं का अंतरकाल नहीं है, वे निरंतर है। सांतर निरंतर की
बात है ना?
सांतर निरंतर की नाना श्रेणी की बात है। अच्छा, नंबर ऑफ ओ कितनी होगी, हमने देखी थी ना कि जो जिनके दोनों बाजू में अंतर ऐसा एक प्रदेश, दोनों बाजू अंतर ऐसे शून्य है ऐसे दो, इस तरह से अनंत अनंतों में है, तो अनंत अनंतों में होते हैं तो वो कभी नहीं ही हो गया ऐसा कभी नहीं होगा ना, ये कहना चाहते। सचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाओं का भी अंतरकाल नहीं है, ये सचित्त जो हमने देखे थे तीन, क्योंकि सेचियपने की अपेक्षा उसको भी अध्रुव स्कंद क्यों कहा, क्योंकि सभी विकल्प हमेशा नहीं पाए जाएंगे इसलिए उसके सांतर कहेंगे वो, परंतु सेचियपने की अपेक्षा सबका अस्तित्व पाया जाता है, यानी वो हो सकता है, शक्यता तो सबकी है। इसी प्रकार महास्कंद द्रव्य वर्गणा के विषय में भी कहना चाहिए। इस प्रकार अंतरानुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। पोस्ट करना नीचे।